Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Radha, Jai Radha, Jai Radha. Hari Ba, Hari Ba. Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba, Hare Ba, Jai Om Vishvanath Paramahansa Parivyajaya Sankaranakirimani Abhichar Bhaktivinoda Swami Shri Prabhupada Maharaj Ki Shri Shri Gaurinidhai Ki Shri Shri Radha Raja Bhai Radha Vishaka Ki Shri Sita Ram Raghunath Hanuman Ki All glory to Shri Samar Bodhi All glory to Samar Bodhi All glory to Shri Guru and Shri Guru हरे कृष्णा आप सबका हार्दिक स्वागत भागवतम क्लास के लिए इंग्लिश हिंदी कितने भक्तों को अंग्रेजी समझ नहीं आती इस सभा में कितने भक्तों को अंग्रेजी समझ नहीं आती ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अक्षोहीनां पतिभिः असुरेभ्यः पार्थं लाइट आई नीड मोर लाइट लंचाने भुवा आक्रम्यमानया वारया चोलम अक्षुहीनां पतिभिः असुरेणैर्प कंचने वा आक्रम्यमानाय वराय कृतोर्यम अक्षुहीनां पतिभिः असुरेणैर्प लाञ्छने भुव आक्रम्यमानाय वाराय कृतोर्यम।
अक्षणीहीनां पतिभिर् असुरैर्नृपलाञ्छने भुव आक्रम्यमाणाय अभाराय कृतोद्यमः
माता जी कोई शब्द
सोहिणीणां महान सैन्य शक्ति से युक्त राजाओं की पति भी ऐसे राजाओं या सरकार के द्वारा असुर है असुर उन्हें ऐसी सैन्य शक्ति की आवश्यकता नहीं रहती फिर भी वे व्यर्थ ही सेना रखते हैं। नृपलांछने जो राजा बनने योग्य नहीं है यद्यपि उन्होंने किसी तरह सरकार हथिया रखी है भुवः पृथ्वी पर आक्रम्यमाणाय एक दूसरे पर आक्रमण करने का लक्ष्य बनाकर अभाराय पृथ्वी से असुरों की संख्या कम करने का मार्ग प्रशस्त करते हुए कृतोद्यम उत्साही वे सैन्य शक्ति बढ़ाने में ही सारी पूंजी व्यय कर देते हैं। अनुवाद। यद्यपि सरकार हत्याने वाले असुरगण सरकारी व्यक्तियों का वेश बनाए रहते हैं, किंतु उन्हें सरकार के कर्तव्यों का ज्ञान नहीं होता। फलस्वरूप ईश्वर की व्यवस्था से ऐसे महान सैन्य शक्ति संपन्न असुर एक दूसरे से लड़ते भिड़ते हैं और इसी तरह पृथ्वी की सतह से असुरों का भार घटता है। ये असुर भगवान की इच्छा से अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाते हैं, जिससे उनकी संख्या घट जाए और भक्तों को कृष्ण भावना अमृत में प्रगति करने का अवसर प्राप्त हो। तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधुजन अर्थात भगवान के भक्त कृष्ण भावना अमृत को अग्रसर करने के लिए सदैव इच्छुक रहते हैं, जिससे बद्ध जीव जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सके। किंतु असुरगण कृष्ण भावना अमृत आंदोलन में बाधक बनते हैं, अतएव कृष्ण ऐसे विभिन्न असुरों को समय समय पर परस्पर लड़ाते रहते हैं, जो अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने में अत्यधिक रुचि रखते हैं। सरकार अथवा राजा का कर्तव्य बिना आवश्यकता के सैन्य शक्ति बढ़ाना नहीं है। उनकी असली कर्तव्य तो यह देखना है कि प्रजा कृष्ण भावना अमृत में अग्रसर हो। इसीलिए कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। प्रकृति के तीन गुणों तथा निर्दिष्ट कार्य के अनुसार मैंने मानव समाज के चार विभाग किए हैं। मनुष्य का एक आदर्श वर्ग होना चाहिए, जो प्रामाणिक ब्राह्मण हो और उन्हें सभी तरह का संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। कृष्ण को ब्राह्मण तथा गौवें अत्यंत प्रिय हैं। ब्राह्मण कृष्ण भावना अमृत को अग्रसर कराने वाले हैं और गौवें शरीर को सतोगुणी बनाए रखने के लिए पर्याप्त दूध देती हैं। क्षत्रियों को तथा सरकार को ब्राह्मणों के द्वारा ही सलाह दी जानी चाहिए। वैश्यों को पर्याप्त अन्न उत्पन्न करना चाहिए और शूद्रों को, जो अपने आप कोई लाभप्रद कार्य नहीं कर सकते, चाहिए कि वे तीनों उच्च वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य की सेवा करें। यह भगवान की व्यवस्था है, जिससे बद्ध जीव भौतिक जगत से छूटकर भगवत धाम वापस जा सके। कृष्ण द्वारा पृथ्वी पर अवतार लेने का यही प्रयोजन है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। हर व्यक्ति को चाहिए कि कृष्ण के कार्यकलापों को समझे। जन्म कर्म च मे दिव्यम। यदि वह इसी पृथ्वी पर कृष्ण के आगमन और उनके कार्यकलापों के उद्देश्य को समझ लेता है, तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है। यही मुक्ति ही सृष्टि निर्माण और कृष्ण द्वारा इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करने का प्रयोजन है। असुरगण ऐसी योजना बनाने में सदैव रुचि दिखलाते हैं, जिसमें लोगों को कुत्तों बिल्लियों तथा शुकरों की तरह कठिन श्रम करना पड़े। किंतु कृष्ण के भक्तगण तो लोगों को कृष्ण भावना अमृत सिखलाना चाहते हैं, जिससे वे सरल जीवन से एवं कृष्ण भावना भावित प्रगति से तुष्ट रहें। यद्यपि असुरों ने उद्योग तथा कठोर श्रम के लिए अनेक योजनाओं की सृष्टि की है, जिससे लोग दिन रात पशुओं की तरह काम करें, किंतु सभ्यता का उद्देश्य यह नहीं है। ऐसे प्रयास तो जगतो अहित अर्थात जनता के दुर्भाग्य के निमित्त है। शाय ऐसे कार्यों से विनाश होता है। जो भगवान कृष्ण के प्रयोजन को समझता है, उसे चाहिए कि कृष्ण भावना अमृत आंदोलन की महत्ता को अच्छी तरह समझे और उसमें सम्मिलित हो। मनुष्य को उग्र कर्म अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए अनावश्यक कार्य करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नूनम प्रमत्त कुरुते विकर्म यद इंद्रिय प्रीति आपनोति। लोग केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक सुख की योजना बनाते हैं। माया सुखाय भरमोदतो विमूढ़ान। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे विमूढ़ हैं। लोग क्षणिक सुख के लिए मानव शक्ति का अपव्यय करते हैं और कृष्ण भावना अमृत आंदोलन की महत्ता को न समझकर सीधे साधे भक्तों पर दोषारोपण करते हैं कि वे मस्तिष्क धुलाई कर रहे हैं। असुरगण कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के प्रचारकों पर झूठा आरोप लगा सकते हैं, लेकिन कृष्ण असुरों को इस तरह लड़ाएंगे कि उनकी सारी सैन्य शक्ति उधरी लग जाएगी और दोनों पक्षों के असुरों का संहार हो जाएगा।
ओम ज्ञान ज्ञानंजना शाखया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभैस्तं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपा कदा मया। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिव शरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा अक्षोर ही नाम प्रतिबेर असुर निरपक कांचन में हुआ अक्रमया मन बाह्य दौर्य महा। तो इस श्लोक का उच्चारण शुक्रदेव गोस्वामी कर रहे हैं और इस अध्याय का नाम क्या है? और इस अध्याय का नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण। ये श्लोक आपको नौवें स्कंद में प्राप्त होता है और दसवें स्कंद से आप जानते हो भगवान के प्रकट होने की और उनकी लीलाओं का ज्ञान प्राप्त करोगे। तो कुछ लोग पहले इसी अध्याय में शुक्रदेव गोस्वामी ने कहा कि परम भगवान प्रकट होते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। और भगवान कौन थे? वासुदेव की के आठवें बेटे। वासुदेव देव की उनकी बड़ी गहरी इच्छा थी कि परम भगवान ने प्राप्त हो पुत्र के रूप में। तो 12,000 देवताओं के वर्षों के लिए उन्होंने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, केवल जंगल में थे, जो पत्ते गिरते थे पेड़ों से और हवा, और निरंतर उनकी चिंतन किया था। चिंतन यही था कि परम भगवान हमें पुत्र के रूप में प्राप्त हो। परम भगवान उनकी तपस्या से बड़े प्रसन्न थे। अगर हम भगवान को आकर्षित करना चाहें तो तपस्या की आवश्यकता है। भगवान तीसरे स्कंद में कहते हैं तपस्या व परम ज्योति भागवत व धोक्ष। जब भगवान को समझना बहुत ही कठिन है, इसके लिए उनके अनेक नामों में एक नाम है धोक्ष जब। पर तपस्या के माध्यम से और भगवान को आकर्षित कर सकते हो। तो भगवान बने उनके आठवें बेटे। वैसे तो जब खम्स जा रहे थे अपनी बहन और वासुदेव को छोड़ने के लिए घर में शादी के पश्चात, उनको रास्ते में एक सूचना मिली कि हे मूर्ख, तुम्हारे बहन का आठवां बेटा तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। खम्स तैयार हो गए तलवार निकालकर बहन का वध करने के लिए। वो वासुदेव ने बड़े होशियारी से उन्हें कहा, डर तो है तुम्हें आठवें बेटे का, पहले साल का तो डर नहीं है, तो आठवा बेटा ले आऊंगा तुम्हारे पास, और अगर ये नहीं तो हर बेटा जो जो जन्म लेगा उसको मैं तुम्हारे पास ले आऊंगा। अगर तुम्हें लगा कि खतरा है तो उसे मार देना। वैसे वचन का आदमी था तो उसने कंस ने स्वीकार कर लिया। और फिर परम भगवान जब प्रकट हुए उस समय उनके माता पिता कहाँ थे? जेलखाने में। तो जब वो प्रकट हुए, भगवान कैसे प्रकट हुए? साधारण बच्चे जैसे नहीं, प्रकट हुए अपने दिव्य रूप में, चार हाथों के साथ, पूरा शरीर, पूरे शरीर में गहने थे, एक बेदौरिया मन मन परस मनी थी। जब माता पिता ने देखा उनके दिव्य रूप, वो समझ गए कि परम भगवान अब प्रकट हुए हैं। उनका भय और कम हो गया। जब माता पिता ने कहा बेटे से, बेटा साधारण बच्चे का रूप ग्रहण कर लो, तो भगवान ने तुरंत ही सारे बच्चे का रूप ग्रहण कर लिया। तो आगे ये कहा गया है इन श्लोकों में, भगवान प्रकट होते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। आप और हम जन्म लेते हैं वह कर्मों के इतिहास के ऊपर, और परम भगवान प्रकट होते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। वो ही अपने माता को चुनते हैं और पिता को चुनते हैं। उनके ही सनातन साथी हमेशा उनके साथ आते हैं। तो परम भगवान क्यों प्रकट होते हैं? श्लोकों में कहा गया है, परि तनाया साधु नाम दुष्कृतम, धर्म संस्था पदार्थ है मम में योगी है। तो शुक्र गोस्वामी कह रहे हैं कि परम भगवान प्रकट हुए वासुदेव देवकी के आठवें पुत्र के रूप में। भगवान इस रूप में क्यों प्रकट हुए? धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म को नष्ट करने के लिए। और परम भगवान प्रकट होते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, इसलिए गीता में एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, कौन कहेगा? जन्म कर्म छामे एवं वेदी ताल होता है, त्यक्त देह पुनः जन्म नहीं मेरी सुधा। मेरा प्रकट होना और अप्रकट होना दोनों ही दिव्य में, तीसरे गुणों के पास, तीन गुणों के पास। कभी आपने देखा इतिहास में कोई बच्चा पैदा हुआ है चार हाथों के साथ? इतिहास नहीं। भगवान का प्रकट होना और प्रकट होना दोनों ही दिव्य में। तो आज के श्लोक में क्या भगवान संदेश दे रहे हैं? यहां कहा जा रहा है शुक्र गोस्वामी के द्वारा कि जो असुर हैं वो मंत्री इत्यादि बन जाते हैं, पर ये नहीं जानते कि सरकार का क्या कर्तव्य होना चाहिए। और आगे ये कहा गया है कि जो असुर हैं भगवान की इच्छा के अनुसार फिर युद्ध इत्यादि में लड़ते हैं, उनका वध हो जाता है। तो जब हम सरकार के नेता बनते हैं, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। आजकल तो हम सोचते हैं सारे विश्व में हमने पॉलिटिक्स में जुड़ना है धन कमाने के लिए, और भारत में ये कैलकुलेशन होता है 10 करोड़ खर्चेंगे इलेक्शन में और 1000 करोड़ कमाएंगे तो अच्छा सौदा है। पर जो सरकार के मंत्री बनते हैं उन्हें उनका आचरण शासक के आधारित होना चाहिए। और अगर हम यही सोचें कि हमारा कर्तव्य है लूटो लोगों को, तो इसका परिणाम होता ही नहीं होता, बड़ा भयंकर परिणाम। भागवतम के 5वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी ने नरकों का वर्णन किया है। जैसे कि आप साधारण समाज में देखते हो सजा मिलती है, तो ये नहीं कि सबको एक बराबर की सजा मिलती है। सजा मिलती है जो निर्भर है किस पर, हमारे कर्म के ऊपर। तो उसी प्रकार अनेक नरक हैं जहाँ कि हमें अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग प्रकार की सजा मिलती है। उदाहरण के लिए मान लो आप मंत्री बन गए चापलूसी करके, और आपने अध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल किया है, नहीं आप अध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हो, तो क्या परिणाम होगा? मृत्यु के पश्चात आपको जैसे गन्ने के रस की मशीन होती है, आपने देखा है गन्ने कैसा रस निकालते हैं, वैसे मशीन में स्क्वीज किया जाता है। क्यों? आप मंत्री बन गए, सरकार बन गए, सरकार के पर अपना कर्तव्य नहीं निभाया। आज भी हम राम राज्य की स्मरण करते हैं। क्यों? कि रामचंद्र जी आदर्श राजा थे, उन्होंने पूरी प्रजा को अपनी औलाद के समान पाला, और वो वेश बदल कर जाते थे देखने के लिए कोई कष्ट नहीं है किसी को, और हर व्यक्ति को अधिकार था महल में प्रवेश करने के लिए। आज अगर आप आपके नेताओं से मिलना चाहो तो मिल सकते हो, टीवी में आप उनका दर्शन ले सकते हो, तो वो आपका दर्शन नहीं ले सकते। तो यहाँ कहा जा रहा है, जब हम सरकार के प्रतिनिधि बनते हैं तो हमें जिम्मेदारी, हमारा आचार बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। उसी प्रकार किसी क्षेत्र में भी अगर आप जिम्मेदारी उठाते हो तो हमें हमारा आचार बिल्कुल ठीक होना चाहिए। उदाहरण के लिए चैत्र क्षेत्र में तुम्हें यहाँ पढ़ते हो कि व्यक्ति को अपने आचरण के द्वारा धर्म के संदेश को प्रस्तुत करना चाहिए। तो यहाँ कहा जा रहा है शुक्रदेव गोस्वामी के द्वारा, जो व्यक्ति सरकार के प्रतिनिधि या नेता बन जाते हैं तो वो अपना कर्तव्य नहीं जानते, उनको भयंकर सजा प्राप्त होती है। सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनका कर्तव्य है कि वो यज्ञ का पालन करें और यज्ञ का संदेश दें। आप भगवत में पढ़ते हो वहां बिना बड़े असुर भाव के राजा थे, उन्होंने समाज में हर प्रकार की तपस्या को रुकवा दिया था, ब्राह्मणों के घरों को जला दिया और कहा मैं तुम्हारी देखभाल करता हूं, और मेरी उपासना के बजाय भगवान की उपासना कर रहे हो, जिसके कारण हर प्रकार की आवश्यकता समाज में समाप्त हो गई। ब्राह्मणों ने देखा कि इस असुर राजा के कारण प्रजा अत्यंत दुखी है, तो ब्राह्मणों ने उन्हें श्राप दिया जिसके द्वारा उनका देहांत हो गया। जब उनके पुत्र पितृ राजा बने, उन्होंने प्रजा को कहा अगर आपको आपकी आवश्यकताएं चाहिए तो ये है उपाय, क्या? भगवान की शिक्षा का पालन। भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं, व्हाटएवर ग्रेट मैन डू अदर विल फॉलो, श्रेष्ठता। जो हमारे नेता करेंगे उसकी नकल प्रजा करेंगे। तो जो असुर भाव के सरकार के प्रतिनिधि हैं वो ये नहीं जानते कि किस प्रकार उनका कर्तव्य निभाना चाहिए। आज के श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी अनेक महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी पहले कहते हैं पवित्र साधना प्रभुपाद जी समझाते हैं, जो साधु हैं उनका हमेशा एक ही भाव रहता है। वो भाव क्या है? समाज की प्रजा को खुशी रखना। श्रील प्रभुपाद 70 साल की आयु में वृंदावन से निकले प्रचार करने के लिए केवल $5 के साथ। क्यों? उनके मन में भाव था कृष्ण भक्ति के द्वारा लोग असली सुख प्राप्त कर सकेंगे। तो साधु सदा यही सोचता है, जैसे कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि किस प्रकार हम लोगों को सुखी बना सके। आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस विषय की चर्चा कर रहे हैं कि समाज का विभाजन 4 वर्ण और 4 आश्रम में होना चाहिए। भगवद गीता में भगवान क्या कह रहे हैं? चतुर्वर्णम, मैंने समाज का विभाग किया है 4 वर्ण 4 आश्रम में। आपको पीछे सुनाई दे रहा है? हाँ दे रहा है। चतुर्वर्णमय सिस्टम गुणा कर्म विभाग, समाज का विभाजन होना चाहिए 4 वर्ण 4 आश्रम में। क्या है 4 आश्रम? ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और वर्ण क्या है? ब्राह्मण क्षत्रिय। समाज में ब्राह्मणों का होना बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहा है नमो ब्रह्मण देवाय को ब्रह्मण ऐसा चार जगह। जो ब्राह्मण हैं भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान चाहते हैं ब्राह्मणों की और गायों की सुरक्षा की जाए। आज के वातावरण में आप देखते हो अनेक व्यक्ति ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण के जो गुण हैं उनका पालन नहीं करते। ब्राह्मणों के गुणों का वर्णन गीता में है, समोधमोधोक्त पोषोचम शांति राज्यम एवं ज्ञान विज्ञान मस्तिकम ब्रह्म कर्म समागम। भक्ति सिद्धांत जी हमारे परम गुरु पहले महान आचार्य थे जिन्होंने समाज में यह प्रचार किया कि व्यक्ति ब्राह्मण बनता है जन्म के आधार पर नहीं पर गुणों के आधार पर। ये नहीं कि हमारा जन्म हुआ ब्राह्मण खानदान में हमें ब्राह्मण का अधिकार। तो आप समाज में असली ब्राह्मणों की आवश्यकता है। प्रभुपाद जी कहते थे इस काम में हमें असली ब्राह्मण बनने चाहिए। तो ब्राह्मण और गाय, गाय माता, उनकी सुरक्षा भी आवश्यक है। हमारे अनेक माताएं हैं, 7 माताएं। पहली माता कौन है? जो जन्म देती है। दूसरी है ब्राह्मण की पत्नी। तीसरी माता कौन है? गुरु की पत्नी। चौथी जो आपको पालती है, फिर राजा की पत्नी, राजा की पत्नी और फिर गाय माता। तो माता की सुरक्षा आवश्यक है। जिस वातावरण में गायों की सुरक्षा नहीं होगी उस वातावरण में कभी सुख नहीं आ सकता। आज आप देख रहे हो सारे विश्व में भौतिक दृष्टि से समाज की स्थिति तेजी के साथ बिगड़ते जा रही है। क्यों? क्योंकि हम धर्म के नियमों से दूर जा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं सरकार का यह कर्तव्य होता है कि हम ब्राह्मणों की सुरक्षा करें और गाय माता की। ये नहीं कि गाय माता को भेजा जाए कत्ल खाने में। तो ये है सरकार की जिम्मेदारी। और जब हम धर्म के नियमों का पालन नहीं करते तो क्या परिणाम होता है, जो आज आप देख रहे हो। आज आप क्या देख रहे हो समाज में, क्या देख रहे हो? समाज की स्थिति तेजी के साथ बिगड़ते जा रही है। जो आवश्यकताएं हैं दिन पे दिन कठिनाई से प्राप्त हो रहे हैं। आपको शायद पता होगा कि भारत के आपके बॉम्बे में तो बहुत अच्छी बारिश है, तो आप सोच रहे होंगे पूरे भारत पूरे विश्व में यही स्थिति होगी। भारत के कई इलाके हैं जहाँ की जल की बड़ी भयंकर स्थिति है, और कुछ दो महीने पहले वैज्ञानिकों ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें कहा है कि पूरे विश्व में भारत सबसे पहला देश होगा जहाँ पानी की समस्या बहुत बढ़ जाएगी, क्राइसिस। तो क्या इसका उपाय क्या है? उपाय है भगवान के नामों का उच्चारण। परसों जब मैं दिल्ली से आ रहा था, मेरे साथ प्लेन में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन था, वो भारत सरकार का इकोनॉमिक एडवाइजर भी है, तो हमने उन्हें कहा कि भगवद गीता में पूरा उपाय है आर्थिक उन्नति कैसे प्राप्त करने के लिए। धन महाराज किसान थे, इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। बेटे ने पूछा कि क्यों ये तैयारी किसके लिए हो रहा है? शुरू में तो पिता ने जवाब नहीं दिया। जब बेटा बार बार बोलते गया तो क्या कहा? हम किसान हैं, हम निर्भर हैं इंद्र की कृपा के ऊपर, ये यज्ञ हम करेंगे तो इंद्र का सहयोग मिलेगा। यज्ञ दाना तपस्या, इन तीन चीजों को कभी त्यागना नहीं चाहिए। तो क्या है आर्थिक उपाय? अन्न भवति भूतानि पचन अन्न सम्भवा। अन्न की प्राप्ति होती है वर्षा के कारण। वर्षा की प्राप्ति होती है कब? जब यज्ञ करोगे। तो धर्म के नियमों के बिना प्रकृति साथ नहीं देती। माया दक्षिणा प्रकृति सुते सा, ये प्रकृति आपके राजनीतिक नेताओं के आदेश में नहीं चलती, किसके इशारे से चलती है। तो अगर हमें आर्थिक उन्नति चाहिए, अगर हमें आवश्यकता चाहिए, तो क्या आवश्यक यज्ञ का पालन? तो तात्पर्य में प्रभु जी कह रहे हैं ब्राह्मणों की सुरक्षा और गाय की सुरक्षा, ये तो बहुत आवश्यक है। पापा से एक दिन एक समय किसी ने पूछा, स्वामी जी आप कुछ जादू कर सकते हो? क्योंकि अक्सर देखा जाता है या सुना जाता है साधु महात्मा जादू भी जानते हैं। तो पापा जी ने कहा, नहीं मैं कोई जादू नहीं कर सकता, पर एक जादू मैंने किया है। इस व्यक्ति में बड़ी जिज्ञासा थी, कौन सा जादू स्वामी जी ने किया? तो मैंने हजारों मृक्षों को ब्राह्मण बना दिया है, एक छोटा जादू है। मृक्ष कैसे हैं? जो कि जुड़ा हुआ है गंदे कार्यों में। ब्राह्मण उसे कहते हैं जो कि शास्त्र के आधार पर जीवन को बिताता है। तो प्रभु जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि जो सरकार है, सरकार का कर्तव्य बनता है कि धर्म के आधार पर शासन किया जाए, और अगर सरकार धर्म के आधार पर शासन नहीं करती तो क्या परिणाम होता है? अत्यंत क्लेश, चिंता, तनाव, निराशा, बेचैनी, जो कि आप आज समाज में देख रहे हो। तो प्रभु जी तात्पर्य में बड़े ध्यान से बार बार ये समझा रहे हैं कि हमें धर्म के आधार पर कार्य करना चाहिए। और परम भगवान प्रकट होते किस लिए? धर्म की स्थापना के लिए। पाए तनाया साधु नाम विनय चतुर्थम धर्म संत पदार्थ आया। तो भगवान प्रकट होते हैं धर्म की स्थापना के लिए। तो अगर समाज में सुख चाहिए तो धर्म के नियमों का पालन आवश्यक है। आज हम समाज में देखते हैं अनेक प्रकार की शिक्षा प्राप्त हो रही है, पर जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है इसकी कोई चर्चा कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। तो इस ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। तो इस अध्याय में भगवान कृष्ण के प्रकट होने के विषय में कहा जा रहा है, और परम भगवान जब प्रकट होते हैं तो अद्भुत लीला भी प्रकट करते हैं। भगवान शब्द किन के लिए उपयोग किया जा सकता है? राशि मुनि ने कहा ऐश्वर्य समाग्रस्य वीरस्य ज्ञानावैराग्य अवश्य शास्त्र में कहा गया है कि जिस व्यक्ति में छह प्रकार के गुण हो असीम मात्रा में, उसे हमें क्या भगवान बुला सकते। ये छह प्रकार के गुण क्या है? ऐश्वर्य समाग्रस्य सबसे धनी। आगे बोलिए बोलिए वीर ऐसा यशा सबसे वीर, सबसे खूबसूरत, सबसे प्रसिद्ध, सबसे ज्यादा ज्ञानी और सबसे ज्यादा त्यागी। जिस व्यक्ति में छह गुण असीम मात्रा में, उसी को हम भगवान बना सकते हैं। तो कृष्ण भगवान प्रकट होते हैं धर्म की स्थापना के लिए, और भगवान के विषय में ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए किसके द्वारा? भगवान के भक्तों के द्वारा। जैसे कि गीता में भगवान कहते हैं, कैसे भगवान ने कहा ये थी कि सूर्य के देवता को एक ज्ञान दिया, पहले तो भगवान ने कहा कि ये ज्ञान सूर्य के देवता को दिया गया था, क्योंकि ज्ञान खो गया था। भगवान ने अर्जुन को क्यों दिया? क्योंकि वो मेरे मित्र हैं, भक्त हैं। तो इससे जैसे आप सुनते हो बार बार प्रभुपाद ने कहा है ये ज्ञान हमें भक्तों के द्वारा प्राप्त करना चाहिए। साथ में प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो हरे कृष्ण के साधु हैं इनके दिमाग को धो दिया है। इंग्लिश में कहते हैं ब्रेन वॉशिंग। हाँ, हिंदी में क्या कहते हैं? दिमाग को धो देना। उनके दिमाग को धो दिया है, कोई बुद्धि नहीं है इनमें, मान लेते हैं जो गुरु जी कहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया था। एक समय एक बहरा पति था। वो बहरा पति पत्नी को कह रहा था इधर आओ। पत्नी ने कहा आ रही हूं सब्जी बन जाए। उसने दूसरी बार फिर कहा इधर आओ। उसने फिर उतर दिया, पर वो बहरा था, सुन नहीं पाया। तीसरी बार फिर बोला इधर आओ, भेरे हो, सुनती नहीं हो। तो भेरा तो बहुत था। प्रभुपाद जी ने ये एक समय हमारा केस हुआ था अमेरिका में, इंग्लिश में कहते हैं ब्रेन वॉशिंग केस, जिसमें सरकार ने आरोप लगाया था, सब क्रिश्चियन पादरियों ने ये हरे कृष्ण वाले दिमाग को धो देते हैं तो बुद्धि है उनके नष्ट हो जाती है। तो प्रभुपाद ने उदाहरण में यह कथा सुनाई, जैसे वो पति बहना था तो पत्नी जब जवाब दे रही थी मैं आ रही हूँ, वो सुन नहीं पाया, कहने लगा तुम बहरे हो क्या। तो उसी प्रकार प्रभुपाद ने कहा भौतिक समाज की सरकार और प्रतिनिधि हमारे दिमाग को धो रहे हैं और जब हम कहते हैं इसकी धुलाई करो तो कहते हैं ब्रेन वॉशिंग। तो असली ब्रेन वॉशिंग तो ये लोग कर रहे हैं जो आप एडवर्टाइजमेंट देखते हो बिलबोर्ड वगैरह, उसमें क्या किया जा रहा है, आपको ये संदेश दिया जा रहा है ये वस्तु खरीदो। कम टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते हो, हर जगह एडवर्टाइजमेंट क्या करते हैं, आपको ये विश्वास दिला रहे हैं ये वस्तु खरीदो। तो हम जो भक्त हैं वो केवल जाकर उस मैल को निकाल रहे हैं, मैल डाल रहे नहीं है। तो हमें ये संदेश को आगे पहुंचाना चाहिए, ज्ञाय दाखोताय कहो। चैतन्य महाप्रभु ने कहा जिसे तुम मिलो उसे ये संदेश दो। तो सरकार के प्रतिनिधि बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब भागवत में एक और कथा पढ़ते हो, एक राजा थे महाराज से भी बड़े दयालु राजा, पूरी प्रजा की सुरक्षा कर रहे थे। एक दिन देवताओं ने सोचा चलो राजा की परीक्षा ले कितने दयालु हैं। तो एक बाज एक चिड़िया का पीछा कर रही थी, चिड़िया पहुंच गई राजा के पास, मुझे बचाओ बचाओ ये बाज मुझे खाने वाली है मुझे बचाओ। तो थोड़ी देर पीछे बाज वहां पहुंच गई, बाज ने कहा यहाँ कोई कबूतर आया था, कहा आया था ये कबूतर मैंने खाना है। राजा ने कहा ये कबूतर मेरे पास आया है सुरक्षा के लिए, मैं तुम्हें किसी हालत में नहीं दे सकता, तो अगर नहीं दोगे कबूतर जो कबूतर का वजन है उतना मांस आपके शरीर से मुझे दो निकाल कर दो। तो राजा मान गए। तो भगवान की इच्छा के अनुसार वो कबूतर का वजन बढ़ते गया, वो राजा अपने शरीर से मांस देते गया। अंत में देवताओं ने देखा ये राजा वो परीक्षा ले रहे थे, अत्यंत दयालु है। वो देवताओं ने अपना असली रूप प्रकट किया और शरीर में चमड़ा जोड़ दिया। तो आज के श्लोक का मूल संदेश यह है तात्पर्य के साथ, जो राजा बने तो उसे अपना बुद्धि से शासन करना चाहिए, धर्म पर आधारित। और राजा बनना ये अर्थ नहीं कि आप अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारी नहीं निभाओ। प्रभुपाद जी एक और पांचवें स्कंद के प्रसिद्ध श्लोक का उपयोग करते हैं तात्पर्य में, नूनम प्रमता निविकमा। ये श्लोक का उच्चारण भगवान ऋषभदेव जी ने किया था पांचवें स्कंद में। भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं नूनम प्रमता कुरुते विकर्मा, जो व्यक्ति इंद्रिया तृप्ति के कार्य में जुड़ता है वो व्यक्ति क्या है, क्या है, मूर्ख। प्रमाता, प्रमाता का अर्थ है मूर्ख पागल। क्या आप कहोगे हमें पागल क्यों बुला रहे हो, तो भगवान ऋषभदेव जी कहते हैं क्योंकि वो ये नहीं समझता आज जो ध्येय है उसके पास वो उसे क्या दे रहा है, केवल कष्ट ही दे रहा है। आज जो ध्येय है चाहे आप करोड़पति बन जाओ आपको क्या दे रहा है, कष्ट दे रहा है। और अगर हम शास्त्र के विपरीत कार्य करते हैं तो फिर से एक ध्येय प्राप्त होगा, तो क्या देगा, कष्ट कष्टेगा। तो इसलिए ईश्वरदेव जी ने क्या कहा, तपो देवी पुत्र का ये न सत्वा सिद्ध ये स्मार में सो के मनंतम। हे वे प्रिय पुत्र, तुम सब तपस्या करो, किसके लिए, किसके लिए, भगवान की खुशी के लिए। और अगर तुम भगवान की खुशी के लिए तपस्या करोगे तो अंत उसके बदले में कुछ प्राप्त होगा, अनंतम आनंद जो कि केवल बढ़ते जाएगा। चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को तो आदेश दिया था भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करने के लिए, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं कितने श्लोक छोड़ गए, चैतन्य आगे कहते हैं आनंद पूरी वर्णन। यह हरि नाम के उच्चारण का एक और लाभ ये है कि आपको क्या प्राप्त होगा, असली आनंद प्राप्त होगा। तो हमें दृढ़ होकर भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। आपने कल भागवतम की महिमा का ज्ञान सुना था, जैसे ये बुद्ध पूर्णिमा के समय हम प्रयास कर रहे हैं अधिक से अधिक मात्रा में भागवतम को बांटने के लिए। क्यों, भागवतम जो है सबसे उत्तम ज्ञान है। व्यासदेव ने सारे शास्त्रों की रचना की थी, सार को प्रस्तुत किया था वेदांत सूत्र में। जब भी उन्हें लग रहा था मेरे कार्य में कोई कमी रह गई है, और जो अपने गुरु से मिले उन्होंने क्या कहा, तुमने निष्काम संदेश नहीं दिया। दूसरे शास्त्र में कर्मकांड है, ये करो तो ये मिलेगा, और भक्ति का वर्णन भी है और कर्मकांड का भी। पर श्रीमद् भागवतम में शुरू से अंत तक केवल क्या संदेश मिल रहा है, भक्ति का। गामा कल्प घोर गलितम फलम, ये वैदिक साहित्य का सबसे पक्का हुआ फल है। ये श्रीमद् भागवतम में इतनी शक्ति है, अगर कोई व्यक्ति एक श्लोक पढ़ ले, एक श्लोक 18,000 श्लोकों में, और उसे अपने जीवन में उतारे, क्या प्राप्त होगा, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो प्रभुपाद जी ने पूरे भागवतम का अनुवाद करने की उनकी योजना थी। प्रभुपाद जी जब भारत से गए, वो एक पैम्पलेट छापा था उन्होंने, श्रीमद् भागवतम 60 volume सेट मैसेज ऑफ पीस। तो ये शास्त्र में कहा गया है बुद्ध पूर्णिमा कौन से दिन पर है, 14 September। तो बुद्ध पूर्णिमा के समय कोई भी व्यक्ति अगर भागवतम उपहार के रूप में देगा किसी को, तो उसे अत्यंत कृपा प्राप्त होगी, जिसके द्वारा वो भगवान भक्ति में उन्नति कर सके। तो भागवतम पढ़ो और भागवतम को बांटो, ये होना चाहिए हमारा लक्ष्य। तो ये अध्याय का नाम है कृष्ण भगवान, ये 9वें स्कंद का अंतिम श्लोक अध्याय है, और अगले अध्याय से 10वां स्कंद प्राप्त हो जाता है, जिसमें आप बड़े गहराई से भगवान की अद्भुत लीला के विषय में पढ़ोगे। और क्या कारण है कि व्यासदेव ने रासलीला इत्यादि का वर्णन 10वें स्कंद में आगे जाके किया है और पहले नहीं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पढ़कर वहां तक पहुंचेगा तो उसके मन में कोई शंका नहीं रहेगी कि कौन है भगवान, कौन है। और 10वें स्कंद में भी आप क्या देख रहे हो, पहले भगवान की बाल लीला, भगवान की जो बाल लीला है उसकी नकल कोई कर सकता है? छोटे बच्चे ने पूतना राक्षस जी का वध कर दिया, मुंह खोला मां के कहने पर, मुंह खोला तो मां ने क्या देखा? क्या सारे विश्व का ब्रह्मांड, ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता है। जो अंग्रेज स्कॉलर थे वो कहने लगे, ऑल द नॉलेज इन द वर्ल्ड इज माइथोलॉजी, कल्पना है, ये कल्पना नहीं है, पर भगवान है दिव्यम। जब आप भगवान के बाल लीलाओं को पढ़ते हो तो जब कोई शंका नहीं रहती कि ये कृष्ण भगवान कौन है, परम भगवान है। तो हमें भगवतम को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, भगवतम को बांटने में सहयोग देना चाहिए। और ये करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? प्रभुपाद की असीम कृपा। तो आज के श्लोक में कहा जा रहा है कि अगर कोई सरकार हो तो सरकार का कर्तव्य बनता है शासन किया जाए धर्म के नियमों के आधार पर। और अगर आप शासन करते हो, धर्म के नियमों का पालन नहीं करते, तो आपको क्या दंड भुगतना पड़ेगा? इतना गहरा दंड। तो अफसोस की बात है कि आज की प्रजा विश्वास ही नहीं करती कि आत्मा है, सोचते हैं कि मृत्यु के साथ सब समाप्त हो जाता है, ये नहीं जानते कि आत्मा का ध्यान तर होते रहता है। तो इस ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, इसलिए ठाकुर भक्ति उन्होंने कहा है ये भगवद गीता का दूसरा अध्याय है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ आपको ज्ञान मिलता है आत्मा देह का अंतर। तो हम भगवतम पढ़ें और सुने, इसके द्वारा जीवन सफल हो सकेगा। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? क्वेश्चन? नो क्वेश्चन?
हरे कृष्ण महाराज, जैसे आपने बोले कि इसमें भागवतम जब कोई दान देता है वो भगवतम जाता है, लेकिन वो कोई भक्त बोलेगा मैं तो एक साल दिया था, तो हर एक साल क्या देना जरूरी है? पिछले साल तो मैं भागवतम लिया कि किसी को गिफ्ट दिया,
पिछले साल समझ गया, पिछले साल आपके मंदिर में ने 700 गीता को 700 सेट बांटे थे, 750। आपके ख्याल से पूरे बॉम्बे में सिर्फ 750 लोग रहते हैं? बॉम्बे की कितनी आबादी है? 2 करोड़। 2 करोड़ से 750 माइनस कर दो, बाकी स्कोप है। अगर आप सोच रहे हम तो उसी व्यक्ति के पास जाएंगे, नए व्यक्ति को जाने का कष्ट नहीं करेंगे जो, तो इसलिए हमें नए लोगों को जोड़ना चाहिए भक्ति के सेवा में। हम सुस्त आदमी हैं, हम मेहनत कम करना चाहते हैं, नतीजा ऊंचा चाहिए। हम उनके पास ही जाएंगे जो कि हमें अच्छी तरह जानते हैं। असली शक्ति तो प्रचारक की है जो वो नए लोगों को जोड़े। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं वैष्णव की पहचान ये है कि कितने वैष्णव को जोड़ता है भगवान की सेवा में। तो जब आप किसी को सेट देते हो, किताब देते हो, आप उनको जोड़ रहे हो भक्ति के मार्ग में। मोर क्वेश्चन? Yes.
Maharaj, I had this question from a long time. When Prabhupada left from India to US, he took Bhagavatam with him. Why didn't he take Bhagavad Gita with him? Why didn't he print first Bhagavad Gita?
I'll tell you why. Prabhupada had translated the Bhagavad Gita, but he had not published it because he didn't have support, financial support. Then when he found out that the manuscript had been stolen, he translated it again, but he did not get it published. Prabhupada only had with him Bhagavatam, first canto in 3 volumes. And when the first canto in 3 volumes was published, Prabhupada felt, now I have the weapons needed to fight with Maya. Then when he went to New York, he wanted the Bhagavad Gita to be published. You know that story? So Prabhupada sent his disciples to the publishers in New York. So the publishers would read the manuscript and say, oh, no one's going to read this. Too much bhakti, too much mention of bhakti and Krishna. So they gave the message, Prabhupada should read, cut out bhakti and Krishna, not put so much emphasis. Nobody will read the book. So when the devotees came back and told Prabhupada, publishers are ready to publish your manuscript, but they don't want you, they want you to reduce mentioning bhakti and Krishna. Prabhupada said, no, we will not reduce it. And then, at that time, devotees had, Prabhupada had produced a record. It was the Hare Krishna Mantra with the commentary. And that record was advertised in a village newspaper. So Brahmananda Prabhu, he passed away a few years ago, he received a letter written in an envelope of Macmillan Publishing Company. Somebody in the company wanted a record. So when Brahmananda saw this envelope, Macmillan Publisher, his eyes opened up and he went to Prabhupada. Normally they would send the record by post. Prabhupada said, don't send this by post, go yourself. So he went himself, and when he went there, he found out this man who ordered the record was just an accountant. He had nothing to do with publishing. But then in his office, he met the religious editor of Macmillan book. So the accountant introduced Brahmananda to the editor of religious books. But the editor, so Brahmananda said, my spiritual master has translated the Bhagavad Gita and we're looking for a publisher like yours. And the editor said, we publish the Quran, we publish the Torah, we publish the Bible, I'm looking for a Bhagavad Gita. So he went back and told Prabhupada. Prabhupada said, take it. And then Macmillan published it. And they published it as it is, with all the mention of bhakti and Krishna. So this was then translated, published in New York. So when he went to America, he didn't have the Gita ready. Okay? Yes. But the thing is, then they published the Gita with all the emphasis on bhakti and Krishna. Yes.
Hare Krishna Maharaj. Maharaj, aap bataye ki jo vyakti indir tupti mein lagta hai, wo ek murkh hai.
But Lord Rishabh has said that. I just repeated it.
So, जब सब कुछ जानने के बाद अगर वही व्यक्ति अगर वो लगातार ऐसे मूर्खता करे तो फिर उसे क्या करना चाहिए महाराज?
सब समझे इनका प्रश्न. भगवान ऋषिदेव कहते हैं जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के कार्य में जुड़ता है वो मूर्ख है. क्यों? क्योंकि वो ये नहीं देखता आज जो दया कष्ट दे रहा है और अगर देवे कृष्ण जब भी वो गलती करता है. तो आपका प्रश्न के समान प्रश्न अर्जुना आस्क्ड इन द भगवद गीता. अर्जुना सेड, हाउ इज वन कंपेल्ड इन टू सिंपल एक्ट अनविलिंगली. यू नो व्हाट्स राइट, यू नो व्हाट्स रॉन्ग, यू स्टिल डू इट. isn't it? What did Krishna say in reply? Who knows? Thus too only, your devouring enemy of the living entity, it is burning like fire and never satiated. Isn't it? So that's the answer. Then Krishna gives you where lust is located. And then he says, the weapon of knowledge destroyed his eternal enemy. There is lust, which can be destroyed with the weapon of knowledge. Okay, any more? Yes, quickly, quickly.
Hare Krishna. Maharaj, as you have told me, पूरे भारत में वर्षा कम हो रही है कई जगह पर, तो लोग कहते हैं कि कई जगह पर ऐसे जो हिली एरियाज ऐसे हैं कि वहां पर तो कितना भी वहां पर भी पाप हो ही रहा है, फिर भी वहां भी वर्षा हो ही रही है. तो आप लोग ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वर्षा सिर्फ पाप हो रहा है इसलिए नहीं हो रही?
ओवरऑल कई डिस्ट्रिक्ट, 21 डिस्ट्रिक्ट that are declared as drought areas. And next year the projection is there will be 45 districts. Ye badhte ja raha hai. Hum to Bombay ke sample dekh rahe hain na, Bombay mein achhi barish aayi hai. Pure Bharat ki sthiti alag hai. Okay, any more questions?
तात्पर्य में भी लिखा हुआ था कि डिवोटीज को प्रीच करना चाहिए. वी शुड प्रीच दिस कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट. सो हाउ वी गेट द स्ट्रेंथ ऑफ प्रीचिंग कृष्ण
कॉन्शियसनेस?
वी गेट द स्ट्रेंथ टू प्रीच.
द की टू सक्सेस इज अटेंटिव चैंटिंग, रीडिंग एंड कीपिंग रिजर्व इन डिवोटी एसोसिएशन. दीज आर द most important steps that we should take. We chant around attentively every day, follow the rules, read, then you'll get the strength to fight Maya. Just like if when you eat grains, you get strength in the body. So Chaitanya Charitamrita says, when you chant, read, associate, then you get spiritual strength. And when you get spiritual strength, then you can feel Maya. Our acharyas have given us the entire process. We just need to follow it. Okay. Okay, any more? आप सभी अब भागवतम का मैराथन करोगे? ट्राई करो.
कृष्ण महाराज, भागवतम क्लास में ही नींद आता है, बहुत जोर से नींद आता है. जितना प्रयास करने का भी नींद, स्वप्न भी आता है. मैंने ऐसे नींद आता है कि एकदम गहरा नींद आता है, कितना प्रयास करने भी छोड़ता नहीं.
आपको प्रसाद खाते हुए भी नींद आती है?
नहीं आता है. प्रसाद खाने टाइम नींद आता नहीं.
जब आप प्रसाद खाने जाते हो नींद आती है?
नहीं आता है.
क्यों?
इंटरेस्ट
प्रसाद में आपकी रुचि है, शास्त्र में रुचि नहीं है, आईना में रुचि नहीं है, इसलिए नींद आ जाती है. तो हमें प्रयास करना है ये रुचि को पैदा करने के लिए. और क्या है उपाय? सावधानी से जाप, सावधानी से अध्ययन. ओके, थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण.
His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj ki.